The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our transmission Path to Success. Every time we bring different topics which leads us to Path to Success. And today's topic is about siblings. Siblings, शायद first time बहुत सारे सुन रहे हैं बहन भाई इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बहन भाइयों के बारे में इस्लाम क्या कहता है सिबलिंग्स के साथ हमारे कैसे रिलेशंस होने चाहिए और उनके साथ हमारे जो मामलात हैं वो किस तरह होने चाहिए इंशाल्लाह आज इसके हवाले से डिस्कस करेंगे वी हैव माशाल्लाह आवर मुबल्लिगे दावत इस्लामी तौकीर अत्तारी हफीज भाई माशाल्लाह शाहिद भाई हैं हाफिज अदील अत्तारी भी तिलावत कुरान पाक से आगाज करते हैं
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب باطلا سبحانك سقينا عذاب النار صدق الله العظيم.
سبحان الله.
بلغ العلا
خدا پاک کا ہو گیا
Today's topic is about the siblings. बहन भाई आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए, बच्चे होते हैं तो कैसा हो, बड़े हो तो क्या हो, एंड आफ्टर जब उनकी लाइफ शादी के बाद मैरिड लाइफ के बाद स्विच ओवर होती है तो आपस में बहन भाइयों के ताल्लुकात के खत्म हो जाने चाहिए या उसके बाद कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये भी एक कामयाबी का रास्ता है कि बहन भाइयों के आपस के ताल्लुकात जो है वो खानदान पर और आने वाली नस्लों पर एक असरअंदाज होते हैं। और हमारे इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल है। ब्यूटीफुल नरेशन नरेटेड बाय हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख पैदा फरमाया है। इस फ्रूट इज बिगर देन एप्पल, सेब से बड़ा उसका फल है और अनार से छोटा है। सॉफ्ट कितना है, मक्खन से ज्यादा नरम है। मीठा कितना है, हनी से ज्यादा मीठा है। शहद जो है दुनिया में सबसे मीठी चीज शहद होती है, तो शहद से ज्यादा मीठा है। नरम मक्खन से ज्यादा नरम क्या चीज होगी, मक्खन से ज्यादा नरम है। सेब से ज्यादा बड़ा है, अनार से थोड़ा अनार से छोटा है। उस दरख की जो ब्रांचेज है, द ब्रांचेज ऑफ दैट ट्री, वो मोतियों की है। उसके जो तने हैं वो सोने के गोल्ड के हैं और जो पत्ते लीफ हैं उसके वो जबरजस्त के हैं। और वो जो फल है वो कौन खाएगा, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम फरमाते हैं ला याकुलु मिन्हा इल्ला मन अक्तरा मिनस सलाती अला मुहम्मद। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। अब आप गौर करें, फल कैसा है, मीठा है तो शहद से ज्यादा, नरम है तो मक्खन से ज्यादा, बड़ा है तो सेब से बड़ा, छोटा है तो अनार से छोटा। उस दरख की खूबियां भी बयान की गई कि वो मोतियों की तरह उसकी शाखें हैं, तने सोने के हैं और पत्ते जो है वो जबरजस्त के हैं। इसका फल कौन खाएगा, वही खाएगा जिसने दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। आदत बना लीजिए कि इंशाअल्लाह विल रिसाइट एज मच एज दुरूद पाक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकीर भाई, हमारा आज का टॉपिक है सिबलिंग्स, बहन भाई।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today's topic is a very important topic and generally it relates to everyone. Almost everyone has a brother or a sister, has some sort of siblings in their life. There might be a few people that are alone from the parents, alone children, but generally a lot of people they do have siblings. And today's topic, inshallah ta'ala, will relate directly to them.
Subhan.
When we talk about relationships as an individual, as a human being, the greatest relationship for us is the relationship of our parents. Now, from the parents, we have certain branches of relationships. From the father side, we have the relationship of the father side, meaning our uncle, our aunties from the father side, the grandparents from the father side, the brother of the father, the sister of the father and their children. Mm-hmm. That's one aspect of the relationship from the father side. Then on the other side, you have the aspect of the branches from the relationship of the mother side. the parents of the mother, which is the grandparents from the mother's side, then also the brother of the mother, the sister of the mother, and then their children as well. That's another branch. And now today what we are talking about is the third branch, which is connected to both the father and the mother, which we generally know as our blood relatives. Directly our brother and our sister, those people that have the same mother and same father, this is the topic today, talking about them. All of these relationships that I've just mentioned, they come under the category of, in Islam, what we call Sila Rahmi. And what Sila means, it is mentioned that Sila means showing benevolence and doing a type of favor upon someone. And by Rahm, what we mean is our relatives. But in Bahari Shaykh Mufti Amjad Ali Azmi Rahmatullahi Ta'ala Ali, he states that Sila Rahmi, this implies establishing relationships, meaning doing any relative any favor and treating them with kindness. And in the underneath the Sila Rahmi, the greatest level of Sila Rahmi is for our parents, our mother and our father. After them, it goes towards our brothers and our sisters. They hold the highest level of Sila Rahmi, showing kindness and affection towards them and being the best of character, best of personality with our brothers and sisters, inshaAllah ta'ala.
MashaAllah, Taqir bhai ne explained ke relationship mein pehle kiski hai, sabse zyada importance di gayi Islam mein. Sabse pehle jo aate hain wo maa-baap hain. Maa-baap ke jo hukuk hain. Aur wo aaye din hum bayan bhi karte rehte hain, discuss bhi karte rehte hain. Uske baad jo second relation, jo most important relation hai hamara, wo siblings ka hai. Behan bhai jinke taalukaat hote hain. اور ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں یعنی اٹ از ناٹ الاؤڈ فار اینی مسلم کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے یعنی سے اس سے ناراض رہے اور جو صلح کرنے میں سبقت کرے گا یعنی کہ جو پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا چلے ناراضگی ہو جاتی ہے لیکن تین دن سے زیادہ نہ ہو یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں آج ہم بڑی جائز ناجائز کی باتیں کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں لیکن اس ٹاپک پہ کوئی ذرا سی بات ہو گئی تھی تو بہن سے تعلق ختم کر دیتے ہیں بھائی سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں بچپن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ تھوڑا غور کریے جب آپ چھوٹے تھے آپ کے بہن بھائی کے ساتھ کیسے رہتے تھے ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا پھر پیار کرنا پھر گلے لگانا پھر چیزیں آگے کرنا تھوڑا وہ ذہن میں تصور لائے میں بھی غور کروں میرا بچپن اور آپ بھی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین اور آج ہم اپنے انہی بہن بھائی کے ساتھ جن کے بغیر ہم تھوڑی دیر نہیں رہ سکتے تھے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آج ہم کتنا یاد کرتے ہیں کتنی بات کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں یہ ایک سوال ہے کہ لائف بھلے اوپر چلی گئی ہے لیکن ان کی محبت تو رہنی چاہیے نا ان کے ساتھ تعلقات تو رہنے چاہیے نا لیکن ایک ہلکے ہلکے کیا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے بالکل بات چیت ختم کر دیتے ہیں ٹائم ہی نہیں رہتا ہے اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا ہے کہہ رہا حفیظ بھائی
صحیح ہے جی شجی گل یہی ہے کہ جب تک کچھ چیز نہیں اہمیت بندے نہیں نیچر ہے
جی
یا فائدہ اصل ہوئے تا غور نہ سنسی یا نقصان سے بچنے نہیں کوئی گل ہو سی تا غور نہ سنسی
جی
جی تو کہ یہ بھائی بڑا اچھی مطلب کہ ابتدا کیتی کہ شداری جڑی ہے نا پہلو تے والد دی طرفوں یا تائے چاچے جس طرح سلسلہ اس طرح پھر والدین دی طرفوں یا خالہ یا ماویں اے شداریاں
جی
اس سے بعد جڑی زیادہ امپورٹنٹ نے جڑی ہے نا انہاں دوواں نے ماؤ تے پیو نی طرفوں جڑے بھن بھرائے
جی
میں ایک واقعہ عرض کرسا نا اس اندازہ ہو سی کہ اسا کیاں اس ٹاپک کیا چنیا اور کس طرح اسا کی سکسیس ہے جڑے کامیابی ہے کس طرح اتنے لے کے جا سکے ایک بندہ وہ کعبے بھی چاہنے کو 40 سال عبادت نمازیں اتھے نفل اتھے جو کچھ روزہ دار ہوئے اتھے جڑے لوگ اتھے کرنے سے اتھے آگے پہ چڑھنے سے اس نے یار بہت نیک آدمی آئے بہت نیک آدمی جی 24 گھنٹے ہی تھے ہونا ہے ایک بار اس طرح کچھ اس کی جاننے والے بندے نہ جا رہا کر سفر پر اس ہے یار یہ بڑا نیک بندہ ہے جی میں تو دسا تو ٹاپک چاہیے اس کی اہمیت کیا ہی ہے
جی
اس تو اندازہ ہو سی اس ہے یار 1000 دینار سے اس کو لو چاہنے میں پیچھے ان کو اس کو چھو بینک شنگ تو ہونے کو نہیں سے اس لے
جی
اس ہے یار اس بندے سے نیک بندہ کو تھیا ہی کو نہیں
صحیح
جی اس تو مطلب کہ جی نا ٹاپک چبرنگا اس تو اندازہ ہو سی کعبے نے اندر بھی نمازاں تے روزے نہیں بچائی سکا لگے اگر سن اتھے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھے جی. وہ چلا گیا اس کی دہیتا ہے بھائی میں جلیاں فلانی جگہ میں مڑی آسا تو پھر میں تہاڈے کول لے جانا واپس لے رہے سا. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے.
جدو اپنے سفر سے مڑیا واپس تو پتہ لگا بندہ مری گیا. اس کا ہے یہ کیا ہوا جی ان کو کوئی اتا پتا کوئی نہیں کوئی نہیں رشتے دار نکلے بچے اولاد کوئی تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا
جی.
اتنے نے ہوں ماں کو پوچھا نے انہیں آیا کہ اس طرح کہ رات نے سہری نے ٹائم نال جتنی بھی نیک روح ہونی نا آپ زم زم نے کول رچنیا تو تم اس طرح کر کہ کل آ تو اس نے نہ کہ نہیں تو بلایا
جی.
تو جی اس آواز دیتی نا تو سمجھو اتنے ہی آ تو اس کو پوچھی کہ نہیں آ
جی.
اچھا وہ آیا ساری رات انتظار کرنے کا ٹائم آیا نا اس نے آواز کی نہیں سنی نہ کہ نہیں تو بلایا تو کوئی نہیں آواز آئی کوئی جواب نہیں آیا
جی.
بڑا پریشان ہوا سویرا پھر گیا علماء کول گیا جب مختلف مطلب لکھا انہاں اگوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ اللہ
نہ تم نہیں تے پھر جڑا نہ اللہ نہ کرائے آخر لگے یمن جا اتھے ایک جگہ یہ برہوت
جی
اتھے ایک کھو آ اتھے جنمیاں نہیں جس اتھے جنتیاں نے شنی اتھے جنمیاں نے روما قید کی تھی پتا پوچھنا 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 گیا راتیاں نات نیری ان سے رات جایا تو مطلب کہ سخت دہشت ناک جگہ ہی ہو
جی.
اچھا اتھے جب ٹائم آیا تو اس نے آواز دیتی سی خوہ اچ کول جائیتا ہے تو بڑی کمزور جی اگو جواب آیا اس نے
جی.
وہ آخر لگا کہ تو جاننا ہے میں وہ بندہ آتا تو کی پیسے دیتے سے اے ہاں جی. اے وہ مارے کو تھے پیسے اے فلانی جگہ جایا تو میں کر رہا تھی اتھے فلانے دروازے کو دبی چھوڑے سے تو تو کڈی کنیا اس کے آخر لگا لیکن یار تو بڑا نیک بندہ سا ہے ہر ویلا تو کعبے اتھے ہی مطلب کہ نمازاں پڑھنا تے کتھے کس طرح آئی گئے آنا پیچھے جتھے نا بعد جگہ لکھا ایران لکھا ہوا جگہ بعد جگہ خراسان نا اتھے ماڑی بھین سی تے معذور سی میں اس کدے وی نہیں سا پوچھا تے اپنی باتاں وچ لگا رہا میں
اللہ
اکبر اس نی وجہ سے ماڑی گرفت ہوئی گی اور مکی جہنم وچ چھڈ چھوڑیا نے
اللہ استغفر
اللہ. او گیا بندہ جس نے امانت سی اس جائے تو سکڑی کڈی پھر گیا اس نے پہنو کول
جی
جی اس نے پہنو کول گیا اتھے اس کی پھر جڑا ہتیا شر کیا دیتا وہ خوش راضی ہوئی پھر دسا لگا کہ اصل تارا پرا سا تے اس طرح تو دعا کر اس نے واسطے
جی.
اچھا پھر یہ واپس آیا نا
جی
تے پھر جس لے اس تکیا تے اس کی مکی ایک کو پتہ لگا کہ اتھے نہیں تو اتھو تھا شفٹ ہو گیا
جی
جنت وچ
جی
اس کو کس طریقے نال خواب وچ دسیا گیا تو اس تو تسا اندازہ لاؤ کہ تسا کتنی ہی باتیں کرو اللہ تعالی نہیں آئی کتنی ہی باتیں کرو کتنے ہی روزے رکھو جی. اگر سنی پین یا پرا سکتا سا کو ناراض ہے نا تو پھر تسا کی فکر کرنی چاہیے.
ماشاء اللہ حفیظ بھائی نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا کہ بہن کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. عبادت کرتا رہا ریاضتیں کرتا رہا قرآن پڑھتا رہا سجدے کرتا رہا لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا بڑا تشویشناک ہے وہ بڑا سخت ہے اس کے بارے میں بہت غور کرنے کی حاجت ہے بہت ضرورت ہے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع رحمی کرنے والا جو رشتے کاٹتا ہے رشتے توڑتا ہے. آج ہم اپنے دوستوں کے اندر بڑے مشہور ہیں محلے میں بڑے مشہور ہیں مسجد میں بڑے مشہور ہیں آس پڑوس میں بڑے مشہور ہیں کہ یار یہ بڑا بندہ چنگا ہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے بڑی مدد کرتا ہے لیکن سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق توڑ کر اگر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ڈرنا چاہیے کہ کہیں عذاب کی حقدار نہ بن جائے کیونکہ جو رشتے تعلقات توڑتا ہے قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ بہن بھائیوں کی محبت بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ان کے حقوق کیا ہیں سبلنگز ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس میں دیکھیں وہ اگنور کر گیا اپنی عبادتوں میں لگا رہا سارا کچھ کرتا رہا لیکن اس میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں عمل دخل جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. پیرنٹس بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تربیت کرنی ہے کہ آگے یہ جو بہن بھائی ہیں یہ آپس میں اتفاق سے رہیں محبت سے رہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟
The brothers mentioned, they're given beautiful motherly presents. First of all, if you look at the blessings of Allah Almighty, which is bestowed upon us, one of the great blessings is having siblings itself. If you look at those people who don't have any siblings, and we ask them, you know, what do you would prefer? You know, they would say, I would like to have a younger brother or a younger sister. And when they're young, when they're together, they play together with toys, you know, have love with each other. But as they grow older, you know, they tend to drift away from each other due to arguments with one another. But the problems we have is when they argue with each other, that drift from that love, it breaks from the brothers and sisters. They start respecting their friends more, give more priority to their friends rather than their own blood. What you realize is that no matter how close your friend is to you, at the end of the day, your friend can only do certain amount for you. Your friend will only go to a certain limit with you. He will not feel for you the way your blood relative will, your brother or your sister will. If you are hurt in any aspect, your blood, your brother and sister will feel that more than anybody else. But unfortunately, the current circumstances, the generation which we're in at the moment, we see that many people, they don't respect their brothers. They don't respect their sisters. And we look at if our fathers have passed away, our older brother takes that position of a father, a role of a father in that aspect. But what respect are we giving to our brother itself in that circumstances? We tend to argue with our brothers that, you know, you can't tell me what to do. You need to do things yourself. We think that we know better. Yet they are older than us. They got more experience in life than us. But yet we don't want to listen to them in any aspect. They're giving us good advice because they've been through. They're older than us in every aspect. And whatever experience they've had in life, they would guide us to the right way. But because we think we know better, we won't listen to them. And this causes more friction, more problems itself. The main problem, I think, is the communication between brothers and sisters. If we don't communicate with each other properly, that causes a drift from brothers and sisters itself.
जी, वैसे भी बड़े भाई के दिल में कुदरती तौर पे मोहब्बत होती है. तो इतना छोटों पे मोहब्बत एक अट्रैक्शन होती है. और फिर लाजिम बात है, अगर माँ बाप में से बाप का इंतकाल कर जाए तो वाकई फिर भाई जो होता है वो बाप की तरह, अक्सर मेजोरिटी जगह ये देखा है, तो वो भाई जो होता है ना, जो छोटा, वो फिर जो होता है उसको कंसीडर करना चाहिए, यह मेरे वालिद की जगह है. जैसे वालिद की रिस्पेक्ट है, उसी तरह मुझे इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है. लेकिन क्योंकि माहौल इस तरीके का हो रहा है, आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई अपना ही सोचे जा रहा है, अपनी बात किए जा रहा है. ऐसा नहीं है, इस्लाम ने हर एक के राइट्स बयान किए, हर एक के हुकूक बयान किए. और अच्छा माशरा कैसे तश्कील दिया जा सकता है, उसमें एक अहम किरदार है बहन भाइयों का. ये याद रखिएगा, भाई का बहन का एक बहुत अहम किरदार है जो माशरे को, सोसाइटी को अच्छा बना सकता है. तौकीर भाई से मदनी फूल लेते हैं कि तौकीर भाई, अब सवाल ये होता है कैसे बना सकता है. देखें, आज अगर मैं अपने बहन भाइयों से बात नहीं कर रहा, एज अ पेरेंट्स कंसीडर करें कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जी ये मेरे बच्चे आपस, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि आप ये जो मेरे बच्चे हैं आपस में इनमें कोई इख्तलाफ हो. हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, आपकी भी यही ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, जो भी माँ बाप है उनकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, इनमें आपस में कोई इख्तलाफ ना हो. आप इनको खुश देखते हैं एक साथ तो आप भी जो है वो खुश होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होता है? प्रॉब्लम ये होता है, बच्चे आपको देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कि आप अपने बहन भाइयों से कैसे ट्रीट कर रहे हैं. अगर आप फुप्पो से, खाला से, ताया से, चचा से बच्चों के बातचीत नहीं करते, दो दो महीने तक जाते आते नहीं है ना, उनकी बात करते हैं बल्कि उनकी बुराइयां करते हैं बच्चों के सामने, तो फिर यही बच्चे आपस में जब बड़े होते हैं तो इनमें आपस में इख्तलाफ होता है. इन्होंने आपसे सीखा हुआ होता है. और अगर आप बचपन से ही बच्चों के दिलों में इनकी मोहब्बत डालेंगे, बहन भाइयों की, अपने बहन भाइयों की, तो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनमें भी आपस में मोहब्बत होगी.
Definitely, you just summarized it very beautifully. It's obviously every child looks up to his parents.
Yeah.
And whatever he learns in his life, he will always try and realize that what experience have they got behind that particular action. And obviously when a child sees that his father, he is not talking to his brothers and sisters, his mother is not talking to her brothers and sisters, then they think that this is normal. Once you grow up, you get married, you get your own family, you live life as that's how you live life.
Yeah.
So they don't think that that relationship is the same as well. But what happens is when the child sees that my parents, they are very close, still even now, they're still close with their brothers and their sisters. Even now, even though they've got children that are ready to have got married and got children as well. So now my parents are grandparents. Even after being grandparents, they are still close with their brothers and sisters. Then they realize, you know what, this is something that I need to keep up as well. that I need to keep this going as well. And this is something that no one will deny. There are these families in our society that the children won't even know who their real uncles are.
Yeah.
Because from a young age, when that child was still young, or even maybe even before he was born, their parents stopped talking to that particular brother, or their parents stopped talking to that particular sister, already had broken out. Now that child is growing up, he doesn't even know that that particular individual is his uncle or is his auntie. Yeah. He doesn't even know that. And this is a big problem that's increasing in our society. If you look a few years ago, it wasn't as big.
Yeah.
Then, alhamdulillah, our families were united. Everything was very, very good. Everyone was okay with everyone.
Yeah.
But in the last couple of years, 10 years, this has been increasing more and more. Everyone wants to live an independent lifestyle.
Yeah.
When an individual grows up and he moves out of the house, he wants to his house to be independent and not involved with the rest of the family. And this is something that is causing this rift between the brothers and sisters as well.
एक तो हमने ये main वजह बयान की कि parents का आपस में जो इनके जो चचा ताया है फुप्पू अंकल आंटी इनसे बातचीत नहीं है जब इनसे बातचीत नहीं है तो उनके cousins का नहीं पता अब वो बड़े हो रहे हैं अपने ही लाइफ स्टाइल के अंदर अब वो ये भी देखते हैं कि कभी कोई बात होती है ना चचा ताया वो चंगा आदमी नहीं है वो अच्छा नहीं है वो ये है वो है अब वो ये सीख रहा है कि मेरे वालिद का जो भाई है मेरा वालिद मुझे सिखा रहा है तो अब जब ये दो भाई बड़े होते हैं तो फिर क्योंकि तरबियत तो आपने ही की है जिनके घरों में भी बहन भाइयों का प्यार सिखाया जाता है उनकी औलाद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से प्यार मोहब्बत बढ़ती है लेकिन जिनके अंदर होता है ना कि माई लाइफ और सिर्फ मेरे रूल्स होंगे इस्लाम ने जो बताया है वो चीजें नहीं होंगी फिर वो सुखी नहीं होते हैं वो खुश नहीं होते हैं खानदान तो अगर खानदान को बेहतर बनाना है मोहब्बतों वाला बनाना है सोसाइटी बेहतर होनी चाहिए अच्छा माशरा तश्कील देना है तो बहन भाइयों के ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा काउंट करते हैं इस मामले में बहन भाइयों में बचपन में मोहब्बत होती है बढ़ते हैं जरा सा कुछ कोई कह देता है कान भर देता है या फिर चुगलखोर जो है ना एक बड़ा वो कारनामे अंजाम देते हैं है वो आकर जो लड़ाइयां करवाते हैं इसकी उधर करते हैं उसकी इधर करते हैं जिसकी वजह से बरसों की मोहब्बत मैं आपसे एक बात करता हूँ यार 20 साल 22 साल तक तो आप साथ रहे ना बहन भाई शादी हुई है थोड़ी देर के बाद चले मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा अभी मैं चुगलखोर की बात कर रहा ना मैं ये कह रहा हूँ वो वाइफ है ना मैं कह रहा हूँ वाइफ के मदर है ना फादर है ना आपके कोई बहन भाई है मैं चुगलखोर की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई भी आ सकता है उस एक चुगलखोर की वजह से एक बात कहने की वजह से खानदान बर्बाद हो जाते हैं बहन भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं यार ऐसा क्या राला कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा हदीस पाक है मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा लेकिन आजकल चस्के की आदत बहुत हो गई है यहाँ बैठते अरे तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में ये कह देते हैं अरे आपको पता है तुम्हारे बारे में ये बहुत हो गया है
Unfortunately, this is one of those illnesses that is increasing in our society. Everyone loves the gossip culture. They love taking one thing from one place, passing it on to another place, taking another thing from that same place and passing it on to the first place again. This is something that is increasing in our society, unfortunately. And like you mentioned, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he stated that the tale teller will not enter into Jannah.
Yes.
And this is why Amir al-Sunnah gave us this nara, the muhabbaton ke chor,
chugal khor.
This is one of the aspects of the tale teller, is he takes away the love that someone has amongst themselves. Someone, the family members have been together from day one, 20, 25, 30, 40 years, just with one individual's tale telling. Just takes one thing from here and passes it there, and that's it, everything is gone down the drain. All of those 30, 40 years of relationship, all down the drain. Just why? Because and one individual came, he took one point, probably not even the complete point, and passed it on to the other side, the other party. That party, another thing that happens is that we don't double check. We don't check that what he's telling us, is that actually true or not? Is that the full story or is that something behind the scene as well? We don't check this. Someone's told us, acha, it's like that, definitely. Oh no, that's it, finished. I'm not going to listen to him anymore. I'm not going to go to his happiness. I'm not going to go to his sadness anymore. And that's it, everything goes down the drain. And this is something, unfortunately, very sad reality is increasing in our society.
Yeah, कहते हैं ना झूठा होने के लिए यही काफी यार सुनी सुनाई बात आगे कर दे और वैसे सोशल मीडिया का दौर आ गया है इसके ऊपर तो बस जो आता है तो आगे थंब भेज देते हैं ये थंब का इशारा भी ना ये ना कयामत में पकड़ हो जाए कि भाई क्यों किया था आपने हर एक्शन का जवाब है ना। तो आपके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, मस्जिद में आने का टाइम नहीं, आपके पास तहकीक करने का कहाँ टाइम होगा? जो बात आती आगे कर दी, जो बात आई उसको थम भेज दिया। या मतलब मैं ये गौर कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे को सबसे ज्यादा हाजत है बहुत सोच समझ के बात करने की। चुगलखोर ये समझे चारों तरफ फैल रहे हैं, चारों तरफ है। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने बड़ी प्यारी बातशात फरमाई कि तुम में मेरे सबसे ज्यादा नापसंदीदा लोग वो हैं जो चुगलखोर हैं। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा लोग कौन है? जो चुगलखोर हैं, जो दोस्तों के दरमियान तफरीका डाले और पाक दामन लोगों में ऐप ढूंढे। अब लाजमी सी बात है उनका काम ही यही होता चुगलखोर का। आप भी तो गौर करें कि यार ये जो मेरे पास आ रहा है इसमें फायदा क्या हो रहा है मेरा।
बिल्कुल बिल्कुल शायद जी गल यही है कि तुसा है ना कि पता किस तरह लगा है। देखो जिस तरह आने ना अल्लाह ताला हर बीमारी ना इलाज उतारा वा
जी।
इस तरह जितनी भी बीमारियां आया जितनी भी बीमारियां उन्होंने इलाज भी दसे वे
सुभान
ठीक है। असदा तकबरा बुगजा ये चुगल हो रहे या सारा कुछ इसना इल्म हासिल करसा ना सा कि भाई इस चीज की किस तरह हैंडल करसा। मैं तुझे वाक्य सुनाना हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रहमान
जी
उन्हें को ये एक चुगल होर आया
जी चल थेला
जी जी ते आह लगा के तुस पता तुसने प्रभु अपने उन्होंने प्रभु ना सा इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत रहमान उन्हें अपनी बीवी से बंगा बनाइया।
ये क्या होता फीस भाई?
चूड़ियां।
अच्छा कंगन होता है
कंगन बंगा सोने नहीं बंगा बनाइया अग लाने वाली गल है इसकी चुगल हो रही है उन्हें अग लाओ तरीके तो नाराजगी फिर बननी ना अग लगनी तो उन अगुआ अग लगने वाली की अग लगन वो बाकी त्यार बैठा अग लगे कि ना लगे ये भी इल्म हासिल करने वाला सही ना है ना तहकीक तो कर तू लपुश तो सही इल्म नहीं कमी है फौरन था फौरन मतलब के उन्हें अगू पता क्या है उन्हें आया गल यही है तो जे ते उस अपने माले नाल बनाया
जी
ते मिकी खुशी है
सुभान अल्लाह सही
देखो ना सही वो तो गल करनी है इसनी चाहिए ना
सही बात है
एक मत ऐसे कि हमें केड़े वेले क्या बोलना
जी जी सही ठीक
जी ते अगर उस अपने माले नाल बनाया तो मिकी बड़ी खुशी हुई
जी
ते जे अगर उस माड़े माल नाल बनाया तो मिकी और खुशी हुई कि माड़े माल है कि अपना माल समझा
क्या बात है क्या बात है।
उसने बोलती बंद कर छोड़ी ने
जी
गल ये है कि तुसा को क्वेश्चन है ना जिसलै
जी
तुसा इस दूसरा गुफ्तगू ना देखो एक है माऊ ने ढिड आने पेटा च पैदा होने
जी
उथे ही रहने पिने खाने पीने बड़े होने जाने देखो शादियां होने से पहले एक मसला तो थिया बड़ा भरा निके भ्राउ की किन्नी जाना कुछ जुड़े अस्पताल जुड़िया
जी
जी निके भ्राउ की अस्पताल दसा जरा ये बड़ा भरा मैं ब्लेम ना करना वाइफ की गल करनी ना जनरली वो ही बड़ा भरा शादी हुई जाए ना जिसलै ते निक्का अस्पताल मरना पे होगा तो उसको टाइम ही नहीं होना तक वो मोहब्बत कुछ चली जानी जी आस्ते आस्ते क्या होना इधरू सुनिया उधरू सुनिया उधरू कान कुसा परे उधरू कान कुसा परे आस्ते आस्ते दोस्त दोस्तों पर जान कुर्बान कर सन माल कुर्बान कर सन
भाइयों
टाइम भरा गरीब मरना पे उसे पूछ लेनी भैन अब वाकया सुनिया ना बच्चे उसने देखने यार अम्मा मामे ने बच्चे गड्डी रखी हुई अम्मा वो तो बड़े 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 मोजा करने अम्मा मामा तो कदे आया ही नहीं इसने कार
जी जी। बहन कैसे सो आप मदनी चैनल के नाज़रीन गौर कर रहे हैं अगर आपके बहन भाई भी इस तरह अल्लाह ने आपको नवाजा है तो पहले उनसे राब्ता करें और अगर आपने ताल्लुक तोड़ा हुआ है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर मदनी इल्तिजा है कि फोन करें माफी मांगे रिश्ता जोड़ें कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता तोड़ने की वजह से कहीं जहन्नम में जलना पड़ जाए। ये बहुत बहुत कहते हैं ना नाजुक मामलात हैं ये बहुत नाजुक ताल्लुकात होते हैं ये जरा सी उस पर तोड़े नहीं जाते हैं इनको तो बांध के रखा जाता है ये कोई डोरियां नहीं है कि ठा करके टूट जाते हैं। आप एक ही माँ ने आपको पैदा किया है एक ही घर में पले बड़े हैं जरा सी लाइट स्विच ओवर हुई आला हजरत कितनी मोहब्बत करते थे अपने भाई से जवाब क्या दिया ये तो मुझे खुशी की बात है उसने मेरा माल अपना माल समझा आज हम क्या कहते मेरा माल है हमें कोई आके कहता अच्छा तुम्हारे भाई ने गाड़ी ले ली है। सबसे ज्यादा जो हफीज भाई डरते डरते बात कर रहे थे मैं कर देता हूँ बात कि ज्यादातर प्रॉब्लम है ना वो जो कहते लगते वो घर में होती है तो घर वालों को भी सोचना चाहिए आज आप किसी के घर में आग लगा रहे आपके घर में भी आग लगी आप भी सुखी नहीं होंगे टिट फॉर टैट होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आगे आपके भी आएगा। जिनके माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उनके बच्चे देखते हैं, वो ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जो इस्लामी बहनें हैं या जो ऐसे घरों से आती हैं या जो इस्लामी भाई इस तरीके से जिनका ताल्लुकात नहीं होते, जिनके वालदेन के या बहन भाइयों से रखने के आपस में, वो फिर घरों में आके ये फसाद पैदा करते हैं। आला हजरत अलैहि रहमान ने कैसी बात की कि यार अपने पैसे से बनाए तो मुझे खुशी है, अब हमारे यहाँ कोई आकर बोले हाँ तो घर वाले पता है वो तुम्हारे भाई ने अपने घर वालों को कंगन बना के दिया, अच्छा मुझे तो बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, हराम का पैसा होगा, फौरन लिख लेगी हराम का पैसा होगा, आज तक लगता है ये दो नंबरी काम कर रहा है। फिर अब उसकी गुनगुन में लगेंगे, फिर गीबत करेंगे बच्चों के सामने, खुद ब खुद रिश्ते तोड़ कर बैठ जाते हैं। यार खुदा का खौफ करो, यार खुदा का खौफ करो, क्यों इस तरह करते हो, क्यों रिश्ते तोड़ते हो? यार एक चुगलखोर आया, घर वाले आए, साल दो साल हुए, आप उनकी बातों पे कान धर रहे हैं। जिन माँ बाप जिन बहन भाइयों के साथ आपने 20 साल 30 साल लाइफ के गुजारे हैं, एक दो साल में कोई घर में आया उसने आपके रिश्ते तोड़वा दिए, आप जो है वो किसी और के घर में जाकर रहने लग जाते हैं, बीवी के कहने पर जो है वो अपने माँ बाप को बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, नहीं मैं अकेला रहूंगा। आप मुझे बर्मिंघम का एक वाकया भी किसी ने बताया कि यार दुआ करे उसके माँ बाप रो रहे हैं, तो वो शादी हुई है, बचपन से माँ बाप ने बड़ा पाला उसको, बड़ी चाहत दी, बड़ी मोहब्बत दी, लेकिन खुद ने ताल्लुकात नहीं रखे हुए थे ना, वो बड़ा हुआ शादी हुई अब उसके औलाद हो रही है तो वो अपने माँ बाप नहीं उसकी माँ बाप की तरफ जा रहा है। उसको भी गौर करना चाहिए उस इस्लामी भाई को, भी आपके साथ आगे आएगा, यकीन करें। माँ बाप को नाराज नहीं करना है किसी के कहने पे, ना अपने माँ बाप को नाराज करे, ना अपने बहन भाइयों को नाराज करे, हर एक के राइट्स हैं, हर एक की लाइन है, जो जिसकी लाइन इस्लाम ने दी है उस लाइन के ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये चुगलखोर खुद ही भाग जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके किस तरह खानदान में सुकून होता है। एक क्लिप इंशाल्लाह हम ले लेते हैं।
प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई बहन अपने भाई की दुश्मन हो जाए तो बाबा जान इस सूरत में भाई को क्या करना चाहिए?
बहन अगर भाई की दुश्मन हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके असबाब पर गौर किया जाएगा, बहन भाई की दुश्मन क्यों बनी। बाज़ औक़ात भाई का कसूर होता है जो उसकी तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से बहन उससे मुतनफ़िर हो जाती है और उसको नाराजी रहती है। लेकिन यह जरूरी है कि जवाबी दुश्मनी ना की जाए। अगर वो सिले रश्मी नहीं करती तब भी खुद कतरे रश्मी ना करे, बल्कि ये सिले रश्मी जारी रखे, वरना वो सिले रश्मी करती आप भी सिले रश्मी करेंगे तो अदला बदला हो गया। जैसे वो सदका देना, अपने नाराज रिश्तेदार को सदका देना सबसे अफजल है, नाराज रिश्तेदार को नाराज हो तो इससे आप इनको ज्यादा तहाइफ दें और इनको मनाने की भी कोशिश करें। अगर इनकी जायज शिकायत है तो वो भी दूर करें, अल्लाह करेगा तो तरकीब बन जाएगी। लेकिन अभी समझाना भी आना चाहिए, बाद समझाना भी झाड़ कर होता है, डांट कर होता है, कोसने देकर होता है, तो फिर कैसे वो समझेगी। आम तौर पर जो खराबियां होती है ना घरों में, इतना समझाया मानता ही नहीं है, ठीक है ठीक, पाँव पढ़ू इसके में पाँव भी पड़ा नहीं मानता, लेकिन जो अंदाज होता है ना समझाने का वो बड़ा रफ होता है, तो इस तरह बंदा नहीं समझता नरमी। हदीस पाक में के जिस चीज में नरमी होती है उस चीज को जीनत देती है, और जिससे नरमी निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। इसलिए नरमी से प्यार से समझाएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे नतीजे बरामद होंगे।
जी अमीर अहले सुन्नत हमारी तरबियत फरमा रहे थे नरमी से प्यार से। अब ये थोड़ी है किसी एक ने रिश्ता तोड़ा तो हम भी रिश्ता तोड़ के बैठ जाएंगे, ये थोड़ी कि कोई आग अगर जो है वो तेल डाल रहा है तो हम भी तेल डालने वाले बने, हम आग बुझाने वाले बने। बदगुमानी, हसद, बुग्ज वगैरह इन चीजों से मोहब्बत टूटती है। जहां मोहब्बत होगी, प्यार होगा, शफकत होगी, नरमी होगी, वहां पर फिर जो है वो आपको मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं, रिश्ते जो है ना कायम नजर आते हैं। रिश्ते टूटने की एक बड़ी वजह कच्चे कान वाले होते हैं, फौरन कान कच्चे, और एक हसद भी बढ़ता जाता है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। और बड़ा मशहूर वाकया है जो हजरत हाबील रजी अल्लाह ताला अनु को जो जो है ना काबील ने कत्ल किया था, तो पहला कत्ल जो हुआ था जमीन पर, तो वो यही हसद की वजह से हुआ था कि आपस में जो है वो हसद हो गया था। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है हमारे इसमें।
जी डेफिनेट, इस इवेंट ऑफ सैयदना हाबील रजी अल्लाह ताला अन एंड काबील, द फर्स्ट मर्डर ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट ऑन द अर्थ, द base and the foundation of this is jealousy. And obviously after all of it, what you realize is that how important it is for us to maintain that level between the brothers, the two brothers, Sayyidina Habil radiallahu ta'ala and Kabil. Sayyidina Habil was the first shaheed of the world and Kabil was the first murderer. So this is something that generally that we need, obviously it takes, where it all starts off with is how in that time, the offspring of Sayyidina Adam alayhi salam, once set, they would be born in pairs, one boy, one girl. And how it was set then was that one pair would not be allowed to marry within the pair, they will marry the other pair. So Sayyidina Habil radiallahu ta'ala an, he was to marry the sister, the one who was born with Kabil. And Kabil was to marry the one that was the girl that was born with Sayyidina Habil. But Kabil wanted to marry the one that was with him. And Sayyidina Adam alayhi salam obviously tried to explain to him that you are not allowed to do this, this is not allowed, you cannot marry the one that has come with you, the same pair. And upon this then the entire event of the sacrifice and all of that took place. And when the sacrifice took place, and Sayyidina Adam alayhi salam ordered that both of you have sacrificed in the way of Allah, because this was a way at that time, during the time of Sayyidina Adam alayhi salam, that when they would give sacrifice, and whoever sacrifice was to be accepted, fire would would take that sacrifice. And when it came time to the sacrifice of Qabil and Sayyidina Habil radiallahu ta'ala and Sayyidina Habil radiallahu ta'ala and sacrifice was accepted and Qabil's was not accepted. Okay. Upon this, Qabil, he got a bit angry, jealousy increased inside him, and then he murdered Sayyidina Habil radiallahu ta'ala. All of it boils back to what? How they are as brothers. Okay. Jealousy amongst them. If you are true with yourself, with the brothers, true with your sisters, you'll be happy on what they are getting. The blessings that Allah subhanahu wa ta'ala is blessing them with, it should bring you happiness. Why are you getting envy in this? Why are you getting jealous that my brother, my sister is gaining highness, gaining a status? You should be happy that alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed my brother, blessed my sister with such a status, with such blessings, such ni'mat. Become happy on this. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for this. And make dua that Allah carries on increasing them in their blessings as well.
Khush hona chahiye waise.
MashaAllah Babu. Fakir Bhai mentioned beautifully about the incident of Habil and Kabil. If we look at the cause of the problem even in today's generation, the majority of the argument between brothers and sisters is either over women or either materialistic things. And they get jealous that he's got more than me, I need to get high status than him. And, you know, being jealous and trying to take over things. If we even look at the incident of Sayyidina Yusuf al-Islam, you know, how his brothers treated him, what they done with him, you know, just to, you know, get him out of the way. And, you know, threw him in the well, and we know the incident, the sword not to trade itself. But look at the what Yusuf al-Islam did. Regardless of what happened to him, he forgave his brothers. Yeah. You know, looked up and cared for them itself. In today, if our brother does something to us, what is our reaction towards them? We stop talking to them. We say, well, you did this to me, I don't know you. We'll cut all ties with them. We won't even let our children talk to our brothers and sisters. But if one person dies, you know, we'll attend the funeral, we'll, you know, act as if that I'm the most person who was closest to him, that there's nobody more dear to me than he was. And, you know, it's just a show in the aspect in front of people that we don't actually have that feeling in our hearts, but we portray it in such a way that, you know, I'm so close to him. In reality, if we really care for our brothers, if we really care for our sisters, we should not break ties in any aspect. Materialistic things, they come and go. Now, if we are sensitive towards our brothers, we are sensitive to our sisters, we won't feel jealous at all. We should be happy if they achieve something, we should be happy for them.
Yeah.
But in today's society, because, you know, everyone's chasing after materialistic things, everybody wants to be of a high status above one another. They're competing one another. Well, he's got this, I should get more than him. Because we are trying to portray that, you know, reputation in our society, which is completely, you know, breaking up our relationships amongst our siblings itself.
نمود و نمائش بڑھتی جا رہی ہے دنیا کی محبت کہتے ہیں نا تمام برائیوں کی جڑ ہے اصل میں وجہ یہ ہے یہ حسد یہ بغض یہ کینہ مطلب ہوتا دنیاوی چیزوں کے اوپر ہی ہے تھوڑا بھائی آگے نکل گیا تھوڑی بہن کے پاس زیادہ تر تو بہنوں کو بہت کمی دیکھا ہے
جی.
وہ تو خوشی ہوتی ہے کہ یار میرے بھائی ترقی وہ اپنے بچوں کو دکھا رہی ہوتی ہے لیکن بھائی کو غور کرنا چاہیے آپ ان کے بچوں کے ماموں کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور مامو آپ اپنے ماموں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے وہی بچے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ چاہتے تھے کہ آپ کی والدہ کے جو بھائی ہیں وہ آپ سے پیار کریں آپ کو کچھ لا کر دیں آپ کے ساتھ بیٹھیں اچھا اگر اللہ نے ان کو کوئی منصب دیا کوئی دولت دی ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی تھی اب سیم آپ اپنے اوپر یہ رول لاگو کر کے دیکھیں کہ وہ جو آپ کی بہن کے بچے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے وہ کیسی محبت آپ سے چاہتے ہوں گے اور جب آپ قطع تعلق رکھ کر بیٹھتے ہیں سال میں ایک دفعہ ان سے ملتے ہیں اور وہ بھی روکھے روکھے انداز میں ملتے ہیں فارمیلٹی کے لیے ملتے ہیں تو یہ رشتے قائم کرنے والی چیزیں نہیں ہیں رشتوں میں دراڑ ڈالنے والی چیزیں ہیں ہمیں یاد رکھیں اولاد کی تربیت جو ہے نا ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اس سے اولاد کو قائم نہیں کیا جاتا اولاد یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے ایکشن کیا ہیں آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہوں گے بچے وہی فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رشتے دار ہیں ہمارے ماموں چچا تایا یہ سارے ہم سے محبت کریں وہی رشتے آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اب یہ جو نیچے والے رشتے سراؤنڈنگ میں میرے ہیں میں ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہا ہوں مائک اب آپ کے حوالے حضور کچھ آپ گفتگو بھی فرمائیں اور کچھ ہمیں کلام بھی سنا تھی انشاءاللہ پیکج کی طرف چلتے ہیں
انشاءاللہ باپو جان جس طرح ماشاءاللہ سارے مبلغین اس ٹاپک کے بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں جس طرح فیض بھائی نے گفتگو دا انداز جڑا نا کس طرح دا ہونا چاہیے جس ویلے اساں دا گفتگو دا انداز اپنے بھن بھراواں نال معاشرے دے وچ نرمی دا ہوسی تے انشاءاللہ اس دی آؤٹ پٹ بھی بہت اچھی ملسی سانو ساڈے نال ہر بندہ محبت کرنے والا بن جاسی تے دوسرا جس طرح رشتے ٹوٹن لگے حسد دی بنا دا جس طرح تساں ارشاد فرما رہے ہو چغلی دی بنا دا ہے کہ اللہ پاک نے سانو عقل عطا کیتی ہے سانو بھی سوچنا چاہیے سب تو پہلے میں اپنے آپ نو دیکھا کہ میرا اپنا جڑا رشتہ ہے میرے بھنا بھراواں نال میرے انوائرمنٹ جتنی بھی ہے ساری ٹھیک ہے کسی دے نال معاملہ تے نہیں جے تے اگر میرا معاملہ خراب ہے نا سب تو پہلے میں اپنی اصلاح کراں اس بعد پھر میں دیکھاں میرے گھر عورتاں ٹھیک ہے بھنا بھرا انہاں دے پر دیکھاں آیا کہ انہاں دے یہ چیز تے نہیں پائی جانی ساری گل مکدی انوائرمنٹ تے کہ ساڈی گھر دی انوائرمنٹ کس طرح دی ہے اگر ساڈے گھر دی انوائرمنٹ واقعی بہت اچھی ہے دینی طبقہ ہے اساں الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے ہاں اور دینی گلاں کرنے ہاں تو انشاءاللہ جے اگر سانو دین دی سمجھ ہے تو اساں چغلی تو بھی بچاں گے غیبت تو بھی بچاں گے حسد تو بھی بچاں گے ہر گناہ تو اساں بچنے دی کوشش کرساں تے میسج یہی ہے کہ اپنے گھر دے وچ علم دین نو عام کیتا جائے انشاءاللہ اس دی بنا تے انشاءاللہ گھر جڑا نا امن دا گہوارہ بن جاسی
ماشاءاللہ اب مدنی چینل کو آنے دے اپنے گھر میں دعوت اسلامی کے مبلغین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول اراکین شورا نگران شورا کہ آپ مدنی چینل آن کر کے رکھیں گے نا یہ محبتوں والی باتیں سننے کو ملیں گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گھر میں سکون آئے گا امید کرتا ہوں کہ اگر تعلق توڑے ہوئے تھے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں بھی توڑے ہوئے تھے چھ مہینے میں ایک دفعہ بات ہو رہی تو ایک طریقے سے ٹوٹا ہوا ہی ہے یار یہ کون سا جڑا ہوا ہے دوست سے روز بات ہو رہی ہوگی جان پہچان سے ڈیلی بات چیت ہو رہی ہوگی لیکن جو رشتے دار ہیں سگے بہن بھائی ماں باپ ان سے آپ مہینوں میں جا کے بات کرتے ہیں تو پلیز کال کر لیجیے
It used to be the case before obviously people used to send letters so when people and our elders migrated to the UK in the 60s 70s then obviously used to be sending letters I remember that time when and I'm not that old I remember that time they used to record cassettes the cassettes And they used to, when someone's going to Pakistan or someone's coming from Pakistan, they would record that, send it, and everyone would gather around and they play it and sing it. Nowadays, everything's on our mobile phones. Someone's sitting on one side of the world, we're sitting on the other side of the world. Not only can we hear them, but we can see physically as well. We can see them. Video calling is so easy nowadays. And it's something so easy that can be done. Multiple times a day, people ring each other, and easily once or twice every other day, if you can't do it every day, once a week at least, give them a call.
इस चीज ने जितना दूर वालों से करीब किया है, करीब वालों से उतना दूर कर दिया है। जितना करीब आपको दुनिया के उस कोने की खबर है बर्रे आजम की, लेकिन अपने सगे बहन भाइयों की खबर नहीं है, तो ये अलग कर क्या रहा है अपने बहन भाइयों से। कम से कम जैसे निगरानी शुरा ने एक हमें तरबियत फरमा, हर जुम्मे के दिन फोन करें, जुम्मा मुबारक का मैसेज करें, कॉल करके माँ बाप को, बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक, दोस्तों को भी, दोस्तों को कर ही लेते हैं, जुम्मे में गए, मुलाकात हो गई, कैसे हैं आप, हेलो हाय हो जाती है। लेकिन जो सगे माँ बाप है, जो इंतजार कर रहे हैं, जो बहन भाई हैं, उनका रिश्ता कुछ और है यार, उनको भी कॉल करनी चाहिए, उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए। चले कुछ कलाम सुनते हैं, जो आप अपनी मर्जी की सुना दें। चले
سلم عليك يا حبيب البلا سبحان الله
भरिया सुबह नल्ला सुबह
माशाल्लाह हफीज भाई, हमारा टॉपिक बहन भाइयों के हवाले से एक खास तौर पे मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हो। आजकल देखा जाता है विरासत के अंदर बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, एक बहुत बड़ा इशू है नॉट ओनली इन एशिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, कोई अगर बहन मांग ले उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जतलाते हैं, तेरी शादी में हमने इतना खर्चा किया, भरोसा नहीं है, अरे क्या हो गया, दे देंगे ना तुम्हारे को। यानी मैं भी खानदानों में देखता हूँ बातचीत होती है। अच्छा, जब तरका तकसीम करने की बात है, अरे सब अपने घर में खुश है, जो बड़े होते हैं ना, कोई होंगे जो भाई भाई उनके होंगे भाई अपने घर, अरे भाई अपने घर में खुश है, वो आपका नहीं मांग रही है, वो अपना जो उसके वालिद जो आपके भी वालिद है उनके भी वालिद है, जो उन्होंने छोड़ा है उनके लिए वो मांग रही है, आप तो हम थोड़ी मांग रही है जो आप कहें कि यार क्या देना है इनको, उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं। ये याद रखें, इसकी सख्त वईदात है, सख्त अजाब है जो इस तरीके से बहनों को डराते हैं, धमकाते हैं। आप तो फायदा उठा रहे हैं, आप उधर रह रहे होते हैं, वो बिचारी कहीं और रह रही है। अच्छा, अपना हिस्सा मांगती है तो उसको कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लालच आ गया तुम्हारे अंदर, हम बहन भाई हैं आपस में, यार बहन भाई हो तो हिस्सा दे दो ना उसका। इस बारे में कुछ हफीज भाई बातचीत होनी चाहिए।
बंदे के विरासत भवे कितने उस माल की तुसा कारोबार चलाया वा
जी,
जरा उसने हिस्सा बनना सा, ठीक है ना, बाद वहां नहीं जेल दिता तो उसी पूरा हो गया जी, बाद खिलाई 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 बड़ा किता ने तो उसी पूरा हो गया। हूं तुकी उस कह दिया भाई क्यों आराम अपने पेटा च बने हो
जी,
आप भी आराम न खा सो, फिर उ औलाद तुझे पैदा हो सी, फिर उलाद फिर तुसा आने जो गल नहीं सुननी, और फिर इसी वजह सुनी ना, और ये माल माल तबाह कर छोड़ा सा, जिथे माल नहीं ना
जी
उथे मुहब्बत थिया
जी, ऐसे ही है,
जिथे माल आई गया ना उथे फिर जरा ना वो कह भैन तक कह भरा तक कह वालदेन
शैतान खिलाता है
जी,
शैतान खिलाता
है, जर्द जमीन ना है ना औरत, ये बंदे की ना 2 इंच जगह माड़े भ्राऊ चाहे चंगे पले रहने खाने पीने से 2 इंच जगह पर। भाई मैं जिथे जाना चाहना सा ना, मैं ना सर जाना चाहना क्या गया उ इस पर नाराजगी हुई हुई, ठीक है, मतलब के उन ए जी चीज तुसा कीती नोटिफाई कीती बहुत जबरदस्त है भाई, जिस जिस ना हिस्सा बनना वालिद साहब और फोत हो नहीं सब पता, ये मैं भी आना ना, जब पता इल्म सीखना बहुत जरूरी है, जब पता लगसी मुफ्ती साहब को जाओ भाई माड़ा ऐसा क्यों अपने आप की जन्म ने नमाजा भी पढ़ने सन, आज भी करने सन, जकाता हैराता भी,
और जिसका हक बनता है उसका हक नहीं दे रहे,
हक नहीं दे रहे हो, तो ये मसीहत ले जासी फिर फर्ज करो ना कर कोई ऐसे, ये जन्नत ही लेके जासी फिर तो आज करने हो क्या, आज जन्नत ही लेके जासन। अकूकुल इबाद जब तक बंदा ना मुआफ कर सी अल्लाह ने मुआफ कर, और हुन मैं एक रवायत में देखी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो आने जिस कोई रिश्ता त्रोड़िया वा ना इथो उठी चला जाए
जी,
मतलब ये तो फूफी को गया सा जाकर उठी तय
जी,
हालांकि तो सिर्फ भैनू भरा उन्हें गल करनी है तो उसको ज्यादा मतलब ताकतवर रिश्ता है
जी,
उन्हें को गया अपने फूफी को तो माफी मंगना से
जी,
क्या बात हुई है, किस तरह क्या आज होया वाकया
जी।
अच्छा, वो भी ऐसा नहीं से ना जा जा आया बड़ा माफिया मंगने वाला, भाई माफी मंगने से कोई आया सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, जेड़ा अपने प्रभु को उजर आना है या आना जी भाई दर गुजर करो, अगर नहीं ना उसकी
अक्सर पे आना
अल्लाह नहीं मिलेगा। अच्छा, हूं तको क्यों फूफी को गया
जी,
ये सारा भाई इस तरह बयान किया ने, तो एक और जगह भी लिखा है कि जिस कौम रिश्ता त्रोड़ने वाले हो ना उस कौम ने दुआ कबूल नहीं होनी, आज कदा तावीज करने हो
जी,
आज कदा इधर जाने हो कदा उधर नसने हो कदा ये करने हो नमाजा पढ़ने हो तो जद पढ़ने की दुआ कबूल नहीं होनी, यारा जिस भैन ने रात बैठी है उसकी तो जय राजी कर, भरा ने रात बैठी हुई उसकी राजी कर, देख उसे वेला दुआ कबूल हो सी।
अच्छा, सदका खैरात कर रहे
सब जा रही है,
बिल्कुल आप गौर करें, आप सबको दे रहे हैं लेकिन जिनका हक है जो फर्ज है वो आप नहीं दे रहे
कर रही हो, तो किस उम्मीद ने सवाब नहीं उम्मीद लगी,
हाजी साहब कौन कहेगा, फिर नवाजी साहब कौन कहेगा, वाह वाह कहाँ पे होगी, बहन भाइयों को देने पे थोड़ी वाह वाह होगी, बोलेंगे तो इसके बहन भाई ये दे रहे हैं लोगों में धड़ाधड़ दे रहे होंगे,
पता नहीं ना लगना भैन भरा की दिया थे जी, प्राउ की देसन क्या पता लगसी भैनों की दिता, एक नैम प्लेट लगती ना लगसी फलाने कुआ खूह खुनवाया फलाने मस्जिद बनवाई फलाने, तो वो मैं हसम करना जरा तो वापस आए तो उन्हें मतलब माफी मंगने वास्ते
जी,
तो उस कौम ने दुआ नहीं कबूल होनी जिससे जो रिश्ता त्रोड़ने वाले बैठे हुए, असा फिर जड़ाना आने जी दुआ नहीं करना कबूल करना, आज इतने साल हो गया जितने महीने हो गया जे हो गया असल जी वजह جڑی برائیاں ہیں اس انہاں نے جڑ کڈو نا پہلو
صحیح
انشاءاللہ اللہ تعالی قبول کرسی
جی ہمارے دیکھیں ہمارے جو بھی پروگرامز ہوں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ویسے نہیں بیٹھتے آج ہمارا مقصد ہے اگر بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے نا صلح کر لیں یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتائیے کیا ہو گیا مرنے کے بعد یار ہم نے نمازیں بھی پڑھی قرآن کی تلاوت بھی کی صدقہ خیرات بھی کیا لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ رشتے توڑ کے بیٹھے تھے جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا ہے ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو رشتے توڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا
One in the narrations it mentions that Allah forgives so many people on the night of Shab-e Barat. One of those individuals that doesn't get forgiven on the night of Shab-e Barat is that individual that breaks off ties. So today, one of the reasons why we are here to discuss on Madrin channel is that if we are facing any of these issues, if we are facing any of these problems, now is the time to rectify it. Now is the time to make those changes that we need to make so that we can tread on the path of success, inshallah ta'ala. And in addition to this, Hafiz Bhai touched on upon this as well. And I want to mention this, that one of the biggest issues in this whole topic is that we don't, that concept of forgiving and forgetting, that's almost vanished from our society. That concept, whole concept of someone comes to you, asks you for forgiveness, you forgive him and you forget about it as well. This is vanishing from our society. What happens is that we'll say to him that, okay, Tika, go, we forgive you. But every single opportunity we get, we'll remind him of what he's done. Yes. Every single opportunity, yes. We'll remind him of what he's done. The concept of forgiving and forgetting is not there anymore. Yes. Once this relives, then inshallah ta'ala is fine. One just example and then we'll carry on inshallah. When kids are arguing as kids, as youngsters, someone's taken the ball off one child. The ball has been taken off, he starts crying, the mother says, give him back the ball. Mm-hmm. What he does, as soon as he gets the second child gets the ball back, the one that was crying, what he will do, he'll throw it back to his brother. Before he's crying because his brother's got the ball. But now what happens, his mother comes, gives him the ball, now straight away, within seconds, the mother's still standing there, he'll throw it back at him. Why? Because straight away, he's forgot about the reason why I was crying was because he took my ball. Now straight away, they're playing again. This is what we need to do as well. As we grow up, as we become elder, obviously there's going to be ups and downs. End of the day, we're human beings. But what happens is when these ups and downs take place, think about how we were as youngsters, how we were as young brothers and sisters, and remember those moments that you spent together, and remember all of those times, and just understand, have a mutual understanding between yourselves. And move on from that, inshallah.
اچھا اس میں جھکنا بھی پڑ جائے تو کوئی وہ نہیں ہے کوئی ناک نہیں کٹے گی کوئی چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں شیطان آپ کو کرو گا نہیں جھک جاؤ گے جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے یہ یاد رکھیں عاجزی میں ہی کامیابی ہے اور تکبر میں ناکامی ہے یہ یاد رکھیے گا جھک جائیں یار بہن ہی ہے نا بھائی ہے نا اللہ آپ کو عزت دے گا یار اللہ آپ کو بڑھائی دے گا سچ میں خوشی ہوتی ہے اور جھوٹ میں پریشانی ہوتی ہے اس لیے عاجزی اختیار کریں کامیابی ملے گی اور کوشش کریں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ نا تعلقات استوار کر کے رکھے کیوں عدیل بھائی کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں
جی باپو جان میں بیٹھے سا نا مجھے گل ایک اور یاد آ گئی ہے ایک تو ہوں کہ رشتہ توڑ دینا
جی
یہ تو چلو سمجھ آؤں گے لیکن آج کل ایک اور نواں سسٹم چل پیا
کیا بات
نواں سسٹم یہ چل پیا کہ جڑا میں دیکھیا کہ میں ایک بندے ناراض ہو گیا
جی
ٹھیک ہے اچھا ہوں میرے رشتے دار آخنے پہ کیونکہ میں اس نے ناراض ہو گیا نا ہوں وہ راضی انہوں نے اپنے تعلقات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میرا دوست ہے وہ میں اگلے دن گل کر رہا سی یار میرے نال معاملہ بن گیا کہ میری فیملی سے ناراضگی پی گئی ہے حالانکہ میری کوئی انہوں نے ناراضگی نہیں ہے میرے والدین کی انہوں نے ناراضگی ہے یا میرے بھن بھراواں کی ہے انہوں نے منو آخیا ہے کہ اگر تو انہوں نے تعلق رکھے گا حالا میں میرے نال بالکل ٹھیک ہے اگر تو انہوں نے تعلق رکھے گا تو ساری طرف جا سکے ہوں اس کا کیا حال ہے یعنی وہ بندے آپ اس نے تعلق اپنے نال ٹھیک ہیں پر ہوں بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے کہ تم اگر اس نال ملاقات کر سیں یا اس نے کہا جا سیں یا اس نے بینڈ کرول کر سیں تو ساری طرف پا رہا
یہ بھی بڑی ایک توجہ دلائی یہ بھی واقعی کامن ہے میری دشمنی ہوئی میں چاہتا ہوں ان سب کی دشمنی ہو جائے بھائی آپ کا کوئی پرابلم ہوا ہے آپ کا پرسنل پرابلم ہے مثال کے طور پہ ابو کا چچا یا تایا سے کوئی معاملہ ہوا کپو سے کوئی معاملہ ہوا سیم آپ لے لیں کہ اگر والدہ کا خالہ سے ہوا ماموں سے ہوا
लेकिन इस्लाम ने खाला और फुप्पो और चचा ताया के आपको अलग से राइट दिए हैं। आप अगर आपस में माँ बाप के भी कुछ आपस में मामला होता है तो आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ माँ का साथ देंगे या बाप का देंगे। इस्लाम ने सबके हकूक बयान किए, आपको सबके साथ मोहब्बत से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। आपका ये नहीं वाली साहब के कहने पे चचा से ताल्लुक तोड़ दिया, जैसे अदील भाई बयान कर रहे हैं कि भाई आपकी दुश्मनी हो गई है तो आप सबको बोलोगे इससे बात नहीं करना,
मऊ प्यूनल भी नहीं करना, पढ़ना आपस ही चो नामी ने साइड के नहीं ना बेनी किन्नी
वो फीस भाई साइड दिलाई देते हैं वालदा की जिम्मे जाते हैं खाना आना देती है ना, लालची होते हैं क्योंकि पता यार जिससे मिलेगा अच्छा बाप के पास दौलत होगी वो बाप से चिपक जाएंगे, छोटे होंगे माँ के होकर यार माँ खाना आना देती है तो माँ के, मतलब आज कल लालच का दौर है। हमें गौर करना चाहिए कि यार लालच लालच बुरी वाला है, पता नहीं किनके लिए बचपन से सुनते आ रहे लालच बुरी वाला है, पता नहीं कौन सी वाला है जो आज तक समझ नहीं आ रही, उसी लालच के पीछे उसी दुनिया के पीछे हम भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं।
This Baba, this great lalaj you were mentioning, there's particular cases I've dealt with where involves brothers and sisters itself. What happens is that if once the parents have become of an older age, and if one of the child is living with them, what they'll do is they'll look after them to a certain extent, then they'll put them in old people's home. And what they'll do is they'll, by false representation, they'll get them to sign documents, so this is for us to, you know, look after you in whatever aspect. And in fact, those papers are in order to take over the property. And they take over the property when the rest of the siblings find out, you know, they have an argument, no, why have you done this? They say, well, I'm the one who's been looking after them. I'm the one who's been paying the bills. I'm the one who's been managing everything. So I have the right over this. So this causes a big drift between the brothers and sisters itself. And when they ask for their share, once if the parents have passed away, when they ask for their share, they don't give their share to their brothers or sisters. What we need to understand is that our sisters, they are with us for a certain amount of time, until they get married. Whether they get married at the age of 18 or 20, whatever time, they're with us for a short period of time. After that, they move on to their own house. They have their own family. And they are entitled to that inheritance of our parents' properties, our parents' wealth. But because of the greed itself, we don't give them anything at all. The second problem which we have is problems between brothers and sisters. What causes is the marriage of our children. We tend to get our children married with our nephews and nieces, and knowing that they don't want to marry there. But because just to keep that family respect, family tie in the cultural system, we force them to get married into that relationship. Knowing that it's not going to work out, they break out. And because the groom and bride didn't get on with each other, their brother, we start blaming our brothers and sisters. It is your son's fault, or it is your daughter's fault that they didn't get on. This caused another drift from the families, another drift from the brothers and sisters, and they end up separated for God knows how many years. Don't want to see each other anymore. Even if they meet each other at other events, they don't, you know, talk to each other, don't want to face each other. If I'm invited to one brother's house, and my other brother's invited, and if I don't get on with my brother, you know, if I go there and I see my other brother's there, I'll turn out. I won't go inside. I'll just walk away, knowing that he's there. This is the mentality we have nowadays.
Allah Taala mahfuz farmaye. Main aapse yehi kahunga ki agar aap aapas mein shaadi bhi karte hain, bacche to bacche bhi agar razi hain, samne wale pe bojh nahi hona chahiye. हैं सामने वाले पे शादी को बोझ मत बनाए। उमर ये होता है कि जब बहन की बच्ची से ऐसे शादी की तो दबा के रखा जाता है। ये एक एक, एक प्रैक्टिस देखने में आई है कि भाई अगर थोड़े से नीचे लेवल पे हैं, थोड़ा सा वो माल में मनसब में नीचे हमसे, तो फिर उनके बच्चों को दबाया जाता है उनके ऊपर, यानी कि भाई हम इतने लोगों को खाने पे लेकर आएंगे, इतने लोगों को शादी पे लेके, जब तो पता है वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कर्जा लेते हैं, कर्जे में डूबते हैं शादी के लिए, उसके बावजूद ही बातें सुनने को मिलती है। ये अच्छा तरीका नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप उसको नॉर्मल अंदाज में करें, जरूरी नहीं है कि दिखावा किया जाए, नमूदो नुमाइश की जाए। और अगर वो आपकी बहन है, सगे बहन भाई हैं, तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि सबसे बेहतर सदका भी जो है ना, वो अपने बहन भाइयों की मदद
करना। शाहिब ऐसी अच्छी गल की थी भाई, तुम को माल आया तुको बराना पैन, कोई बात नहीं, मैं देता सारा खर्चा।
क्या बात,
जितना मैं कसा बलीमा शादी पर मैं गलासा हूँ,
क्या बात की, अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। बस होता होगा कहीं हफीज भाई, होता तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन प्रैक्टिस जनरल नॉर्मली यही होती है कि हम बोझ बनते हैं खामखाई के लिए, जो है ना अपना वो कहते ना कि ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऊंचा कोई इस तरीके से नहीं। अल्लाह जिसको इज्जत देता है वो ऊंचा हो ही जाता है, ना मेरे कहने से होगा ना आपके कहने से होगा। अल्लाह आजिजी इख्तियार कहते हैं, आजिजी इख्तियार करने की, कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आइए जो आज का हमारा वजीफा है उसको भी ले लेते हैं। नेवर बिकम नीडी, बड़ी होती है कि यार हमें बड़ी आ जाते हैं, हर वक्त कंप्लेन ही कर रहे होते हैं। बड़ा प्यारा वजीफा है, जो इंशाल्लाह ये वजीफा करता रहेगा विल नेवर बिकम नीडी इंशाल्लाह, वो जरूरतमंद जो है वो नहीं होगा। और वो क्या है, या हकीमो या हकीमो या हकीमो, बड़ा प्यारा नाम है। Whoever recites this 80 times after each of the 5 daily salah every day, पांचों नमाजों में नमाज के बाद डेली जो ये पढ़ता है 80 टाइम्स ओनली या हकीमो स्टार्ट एंड एंड विद दुरूद पाक विल नेवर बिकम नीडी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोबारा नोट कर लीजिए, या हकीमो 80 टाइम पढ़ना है आफ्टर एवरी सलाह, जो पांचों नमाजें होती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो वो विल नेवर बिकम नीडी। ये हमारा आज का जो है वो वजीफा था।
माय ऑब्वियसली कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग इज that remain good, remain connected, show good character, good personality with your brothers, with your sisters, and definitely inshallah ta'ala build this relationship with your siblings so that this relationship can bring success to you and it will rub off onto your upcoming generations as well inshallah ta'ala, and they will also feel the benefits of this as well inshallah.
Ji shaji ek sala nikal jayega waqia likha jaisi karni waisi parni
ji
do pehna siyan गल मुंह चुकट नहीं सोचो पता नहीं है नवा दिल च लगे और मजलूम नी दुआ आने जानवर भी मजलूम अल्लाह ताला दुआ कबूल करे जी। ते ओ दो भैन रिश्ते किते से तिया पुत्रा ने ते एक नी ती ना जरा ना उस एनका लाइया सी तो दुए हया कोई गल बात इस खिलाफ नहीं मैं ना करनी ताड़ी ती अन्नी ती ना पुत्रा ना रिश्ता
अल्लाह
उस रिश्ता तोड़ी चली गई घर उसे गई उसे कोई पाइप शेप सरिये शरिये से अपर रख ले तो ख्याल आया चलो चाहिए तो रखा अपर तो चाने चाने उन्हें सरिया उसने पुत्र ने खिंच लगा तो अच्छी बन गई। उससे वाला ख्याल आया थे कि मैं भाई तो आई सी यहाँ इस वास्ते ध्यान करो गल करने से वेला कोई पता नहीं कुछ वेला क्या हो जाए वेला फिर हाथ नहीं
दिल भी नहीं दुखाना चाहिए इससे ये भी मदनी फूल मिलता ना किसी को अजियत देना तकलीफ देना शायद भाई
My message is that no matter what disagreements you have between your siblings itself, if you remain like a hand, tight fist together, you know, you will be remain close with your siblings itself. Don't let anybody cause any problems between you and your siblings. No matter how good friends they are at the end of the day, they're friends. Your blood is your blood at the end of the day. And your blood will always be with you.
MashaAllah.
जी बापू जान बस यही अर्ज करना चाहना कि हमेशा हक का रास्ता ना छोड़ो, अगर कोई मसला किसी किस्म का हो जाना है तो मोहब्बत के नाल उसको हल करो, आपस से जितनी ज्यादा सा मोहब्बत कर सा इतनी ज्यादा साडा जड़ा ना एनवायरमेंट अच्छी हो सी, तो बस मोहब्बत नाम करो ते आपस में मिलजुल कर रहिए।
मेरी अर्ज ये है आखिर में आप सबसे, आज के हमारा ये टॉपिक लेने का मकसद, अगर आपके सिबलिंग्स आपस में कोई नाराजगी है तो जोड़ लीजिए, मोहब्बत करें, प्यार करें। एक एक गरीब आदमी था, मरने से पहले उसने बच्चों को नसीहत की, वो छोटी छोटी सी लकड़ियां लाया 8-10 और बोला इसको तोड़ो, तो हर बच्चा तोड़ देता। फिर उसने तमाम लकड़ियों को जमा किया और उनको जमा करने के बाद एक रस्सी में लपेट दिया, बोला आप तोड़ो, सारों ने मिलकर जान लगा ली, लेकिन जो लकड़ियां थी वो नहीं टूटी क्योंकि मिल गई थी ना, जैसे शाहिद भाई ने बताया आपस में जब इत्तेफाक है ना मोहब्बत है तो बड़ी से बड़ी चीजें भी इंसान पता कर लेता है, लेकिन जब आपस में इख्तलाफ होता है तो फिर छोटी सी चीज भी जो है ना वो फितना बन जाती है और फिर छोटे से काम भी बंदा नहीं कर सकता है। माफ करें, अल्लाह ताला आपको भी माफ फरमाएगा। मदनी चैनल देखते रहिए।
The path of knowledge is the way to Jannah.